नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। सरकार ने ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में 4 नई सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी है। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 4,594 करोड़ रुपए है। आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के निर्णय की जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के लिए मजबूत तंत्र तैयार कर रही है।
आज 4 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, 2 ओडिशा में, 1 पंजाब में और 1 आंध्र। 2022 में जब सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी का दूरदर्शी नेतृत्व है जिसके तहत उन्होंने एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के तहत काम चालू किया और कंप्लीट इकोसिस्टम पे ध्यान देने का प्रधानमंत्री जी का हमेशा मार्गदर्शन रहा। तो अब कंप्लीट इकोसिस्टम डिजाइन, वेफर, वेफर फैब्रिकेशन, पैकेजिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट्स, असेंबली, टेस्टिंग, फाइनल प्रोडक्शन, हर चीज पे, इलेक्ट्रॉनिक्स के हर सेक्टर पे, हर डायमेंशन पे काम चल रहा है।
श्री वैष्णव ने कहा कि पिछले 11 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में विनिर्माण में 6 गुना तेजी आई है।
मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जहां 2 थे 11 वर्ष पहले, आज 300 से अधिक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भारत में हैं और बढ़ते जा रहे हैं। उनका इकोसिस्टम बढ़ रहा है, उनके डिफरेंट कंपोनेंट अलग अलग जगह पे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो उसका ओवरऑल एक बहुत अच्छा देश भर में इकोसिस्टम होने लगा है। मोबाइल का प्रोडक्शन 28 गुने बढ़ा है, अब 5.5 लाख करोड़ का मोबाइल का प्रोडक्शन होने लगा है। मोबाइल फोन का एक्सपोर्ट 127 गुना बढ़ा है, 2 लाख करोड़ क्रॉस कर चुका है।
श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार ने लखनऊ मेट्रो के चारबाग से बसंत कुंज तक 1B चरण को भी मंजूरी दे दी है, जिस पर 5,801 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। संसद ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 को पारित कर दिया है। आज इस विधेयक को राज्यसभा में पारित किया गया, लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक राष्ट्रीय खेल निकायों को मान्यता प्रदान करने और उनके कामकाज को विनियमित करने का प्रावधान करता है। विधेयक में प्रत्येक निर्दिष्ट खेल के लिए राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति और राष्ट्रीय और क्षेत्रीय खेल महासंघों की स्थापना का प्रावधान है। ये राष्ट्रीय निकाय संबंधित अंतर्राष्ट्रीय निकायों से संबद्ध होंगे। लोकसभा ने भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 पारित कर दिया है। ये विधेयक बंदरगाहों से संबंधित कानूनों को सुदृढ़ करने, एकीकृत बंदरगाह विकास को बढ़ावा देने, व्यापार को सुगम बनाने और भारत के समुद्र तट का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की है। लोकसभा में आज पहले स्थगन के बाद कार्यवाही फिर शुरू होने के बाद अध्यक्ष ओम बिरला ने इस संबंध में जानकारी दी। श्री बिरला ने कहा कि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को हटाने के लिए सत्तारूढ़ और विपक्षी 146 सदस्यों से मिले हस्ताक्षरित नोटिसों को स्वीकार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि जांच समिति की रिपोर्ट आने तक इस संबंध में प्रस्ताव विचार अधीन होगा। प्रवर्तन निदेशालय अवैध सट्टेबाजी ऐप परिमैच से जुड़े धन शोधन के एक मामले में मुंबई, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, मदुरै और सूरत में विभिन्न स्थानों पर तलाशी ले रहा है। निदेशालय के अनुसार प्रारंभिक जांच से संकेत मिलता है कि ठगे गए उपयोगकर्ताओं से 2000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि अवैध खातों में जमा की गई, जिन्हें बाद में कई भुगतान माध्यमों और घरेलू धन हस्तांतरण एजेंटों के जरिए स्थानांतरित किया गया। जम्मू कश्मीर में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान श्रीनगर में आज सुबह से ही जारी है। प्रतिभागी राष्ट्रीय अभियान के प्रति देशभक्ति और निष्ठा का प्रदर्शन कर रहे हैं। चेन्नई में हर घर तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। आम जनता और क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के कर्मचारियों ने राष्ट्र निर्माण के महत्व को उजागर करने के लिए मानव श्रृंखला में हिस्सा लिया। भारत की नम्रता बत्रा ने आज चीन के चेंगदू में विश्व खेलों की वुशु स्पर्धा में भारत के लिए पहला पदक जीतकर इतिहास रच दिया। उन्होंने आज शाम महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक मुकाबले में चीन के मेंग्यू चेन से 0-2 से हारकर रजत पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।